नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
Fertilizer and foreign exchange.
इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन